ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। भयरहित वातावरण में चुनाव संपन्न करने के लिए सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं, गृहमंत्री अर्याल का कथन। प्रतिनिधि सभा चुनाव से संबंधित विषयों में विचार विमर्श के लिए नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कार्य संपादन समिति की बैठक होगी कल। और अमेरिका चाहता है रूस और यूक्रेन युद्ध आगामी जून तक खत्म हो, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का कथन। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री ओम प्रकाश अर्याल ने कहा कि प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए सुदृढ़ सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। आज निर्वाचन सुरक्षा और आचार संहिता क्रियान्वयन के बारे में मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालय नुआकोट में संज्ञान लेने के बाद संचार कर्मियों के साथ बातचीत में गृहमंत्री अर्याल ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि भयरहित वातावरण में चुनाव सम्पन्न करने के लिए सुरक्षा के सुदृढ़ प्रबंध को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। इस बात का जिक्र करते हुए कि वर्तमान सरकार का दायित्व सफलतापूर्वक चुनाव कराना है, उन्होंने मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान में सहभागी होने का आग्रह किया। आगामी फागुन 21 गते होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव को लेकर नेपाल भारत सीमा नाके 48 घंटे पहले से बंद रहेंगे। मोरंग के विराटनगर में संपन्न नेपाल के सशस्त्र प्रहरी बल और भारत के सीमा सुरक्षा बल के डीआईजी स्तरीय 16वीं बैठक ने ये निर्णय किया। बैठक में सीमा सुरक्षा, सुरक्षा सूचना आदान प्रदान, तीसरे देश के नागरिकों के अवैध प्रवेश पर नियंत्रण, मानव तस्करी, जाली नोट, हथियार और ड्रग्स तस्करी पर नियंत्रण लगायत विषय पर विचार विमर्श हुआ था। निर्वाचन आयुक्त डॉ जानकी कुमारी तुलाधर ने कहा कि लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए चुनाव प्रणाली का पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय होना जरूरी है। निर्वाचन पर्यवेक्षण के लिए अनुमति प्राप्त राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों और प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श के लिए आज आयोजित कार्यक्रम में आयुक्त तुलाधर ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि चुनाव को स्वच्छ और स्वतंत्र ढंग से संपन्न करने में चुनावी प्रक्रियाओं के पर्यवेक्षण की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने पर्यवेक्षकों से पर्यवेक्षण के दौरान पूर्वाग्रह या अनुमान के आधार पर निष्कर्ष निकालने से बचने का सुझाव देते हुए तथ्य पर केंद्रित होकर अवलोकन व पर्यवेक्षण करने का आग्रह भी किया। नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कार्य संपादन समिति की बैठक कल बुलाई गई है। कांग्रेस मुख्यालय के कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद दुलाल ने आज बयान जारी कर केंद्रीय कार्य संपादन समिति की वर्चुअल बैठक कल सुबह 8:30 बजे होने की जानकारी दी। बयान के मुताबिक कल की बैठक में प्रतिनिधि सभा निर्वाचन परिचालन निर्देशिका 2082, कांग्रेस सार्वजनिक कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका 2082 और केंद्रीय अनुशासन समिति गठन करने लगायत विषय में विचार विमर्श होगा। आज जनकपुर धाम में जिला जनस्वास्थ्य कार्यालय की तरफ से एचपीवी टीका संबंधी प्रोग्राम में कार्यालय प्रमुख उमेश यादव ने बताया कि जनकपुर और धनुषा में 16,900 लड़कियों की फ्री वैक्सीन लगाई गई है। उन्होंने बताया कि यह वैक्सीन 10 से 14 साल की लड़कियों को लगाई गई। उन्होंने बताया कि रविवार से ग्रेड 6 की लड़कियों को वैक्सीन लगाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि सरकार का लक्ष्य 100% लड़कियों को वैक्सीन देना है। कार्यालय प्रमुख यादव ने बताया कि स्कूल टीचरों को भी वैक्सीन के बारे में जानकारी देने के लिए अभिमुखीकरण किया गया है। उनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार नेपाल में हर साल 2,169 महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर होता है। अगर यह इन्फेक्शन 20 साल तक रहता है तो कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। कार्यक्रम में जिला समन्वय समिति धनसा के चीफ राज नंदन मंडल ने कहा कि कैंसर के खिलाफ वैक्सीनेशन के काम में सभी का सहयोग होना और मदरसों के लड़कियों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक किया जाना चाहिए। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
नेपाल टेलिकम को 4G
सारी नि छिटो चल सरी ये
छिग्यो कल गर्दा नो बोर्जी नेपाल टेलिकमको फोर्जी
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकमको फोर्जी
गेम खेल्दा नि टेन्सन नोजी नेपाल टेलिकमको फोर्जी आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकमको फोर्जी
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। अभिनेता सुनील थापा का आज 68 साल की उम्र में निधन हो गया। अभिनेता थापा को आज सुबह अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद इलाज के लिए थापाथली के नर्विक हॉस्पिटल में ले जाया गया था। फिल्म आर्टिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मोहन निरोला ने कहा कि हॉस्पिटल ने बताया कि अभिनेता थापा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। निरोला ने कहा उन्होंने अपने असिस्टेंट से उन्हें जल्दी जगाने के लिए कहा था क्योंकि उन्हें सुबह एक फिल्म की शूटिंग पर जाना था। जब असिस्टेंट सुबह उन्हें जगाने गए तो अभिनेता थापा बेहोश मिले और उन्हें हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल ने शुरुआती जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। अभिनेता थापा के परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी है। निरोला ने कहा कि उनके परिवार के लोग मुंबई, इंडिया में रहते हैं और वे आ रहे हैं। लंबे समय से नेपाली और इंडियन फिल्मों में एक्टिव रहे थापा की असमय मौत ने पूरे नेपाली आर्ट वर्ल्ड को चौंका दिया है। फिल्मों में विलेन के किरदारों को लोगों का ध्यान खींचने और सम्मान दिलाने में कामयाब रहे थापा राते काइला के किरदार से खास तौर पर पॉपुलर हुए थे। वह संकमूल में एक अपार्टमेंट में रह रहे थे। पवित्र पशुपति इलाका जहां वैदिक सनातन हिंदू धर्म के पूज्य भगवान पशुपतिनाथ दुनिया भर में फैले हुए हैं और विश्व संपदा सूची में सूचीकृत में शामिल है, महाशिवरात्रि की तैयारी में साफ किया जा रहा है। बागमती सफाई अभियान के 665वें हफ्ते में महाशिवरात्रि की तैयारी में पशुपति इलाके के सूर्य घाट, आर्य घाट और राम मंदिर इलाकों की सफाई की गई है। सफाई अभियान के जरिए 4 मेट्रिक टन कचरे का मैनेजमेंट किया गया। सफाई अभियान चलाने वाले किशोर सिंह शाही ने राजस्व को बताया। उन्होंने कहा कि सफाई से निकलने नॉन डिकम्पोजेबल कचरे का मैनेजमेंट काठमांडू महानगर पालिका की एक गाड़ी से किया गया। चूंकि भस्मेश्वर घाट से बांध तक बागमती के किनारों पर ज्यादा कचरा देखा गया, इसलिए यह तय हुआ कि अधिकार संपन्न बागमती समिति ने इसे साफ करने के लिए डोजर का इस्तेमाल करेगी। आज की सफाई में पशुपति एरिया डेवलपमेंट फंड के मेंबर सेक्रेटरी प्रकाश मणि शर्मा, एम्पावर्ड बागमती सिविलाइजेशन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कमेटी के प्रोजेक्ट चीफ मचकाजी महाराजन समेत कैंपेन में करने वाले ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अगले शनिवार को नेपाल आर्मी, नेपाल पुलिस और आर्म्ड पुलिस फोर्स भी भागीदारी से पशुपति एरिया की भी सफाई की जाएगी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि अमेरिका ने रूस और यूक्रेन दोनों को युद्ध समाप्त करने के लिए जून 2026 तक की समय सीमा दी है। अगर इस समय अवधि तक कोई समझौता नहीं होता है तो अमेरिका दोनों पक्षों पर दबाव बढ़ा सकता है। जेलेंस्की ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि अमेरिकी प्रशासन चाहता है कि गर्मियों की शुरुआत तक युद्ध खत्म करने की दिशा में ठोस नतीजे सामने आए। हालांकि जेलेंस्की ने बयान पर शनिवार सुबह तक रोक लगा दी गई थी। उन्होंने कहा अमेरिकी पक्ष चाहता है कि इस युद्ध का अंत इस गर्मी की शुरुआत तक हो जाए। वे इसके लिए एक स्पष्ट टाइमलाइन चाहते हैं और उसी के अनुसार दोनों पक्षों पर दबाव भी डाला जाएगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति के मुताबिक अमेरिका इस प्रक्रिया को केवल बातचीत तक सीमित नहीं रखना चाहता है बल्कि पूरे शांति समझौते का एक साफ रोडमैप तैयार करने की कोशिश में है। जेलेंस्की ने यह भी संकेत दिया कि अगर जून तक कोई ठोस प्रगति नहीं होती तो ट्रंप प्रशासन यूक्रेन और रूस दोनों पर कूटनीतिक और रणनीतिक दबाव बढ़ा सकता है ताकि युद्ध को किसी भी हाल में रोका जा सके। बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष अब पांचवें साल में प्रवेश करने वाला है। अमेरिका की कोशिशों के बावजूद अभी तक शांति की दिशा में कोई ठोस सफलता नहीं मिली है। हालांकि इन सब के बीच जेलेंस्की ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच आगे और बातचीत जल्द होगी। संभव है कि ये बैठकें अमेरिका में हो। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भयरहित वातावरण में चुनाव संपन्न करने के लिए सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। गृहमंत्री अर्याल का कथन, प्रतिनिधि सभा चुनाव से संबंधित विषयों में विचार विमर्श के लिए नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कार्य संपादन समिति की बैठक होगी कल। और अमेरिका चाहता है रूस और यूक्रेन युद्ध आगामी जून तक खत्म हो, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का कथन। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।